जय कुंज बिहारी बाबा, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी, जय गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी, जय गिरिवर धारी, जय यशोदा नंदना, जय ब्रज जन रंजना, जय जय यशोदा नंदना, जय ब्रज जन रंजना, जय जय यमुना तीर वनचारी, जय कुंज बिहारी, जय कुंज बिहारी, जय
सभी गाइए।
जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, अद्वैता गदाधर शिव सदि गौर भक्ता वृंदा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, ह
Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna. Jayo Prabhupada, Jayo Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada. Prabhupada, Jayo Jayo Prabhupada. Jaya Vishnupad Paramahamsa Parivrajakacharya Ashtoshatra Shatris Divine Grace Yasi Bhakti Vedanta Swami Shri Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrind Ki Jai Namacharya Shri Haridas Thakur Ki Jai Premsa Kaho Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Shrivas Adi Shri Gaur Bhakta Vrind Ki Jai Shrivas Pandit Tirubhav Mahotsav Ki Jai Iskon Faridabad Yatra Ki Jai Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jai Advaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jai Advaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda Jai Srila Prabhupada Ki Jai Hare Krishna, aaj bahut hi pavan divas hai jisme agar aap log kafi saalon se jude hain to jo Hare Krishna Mahamantra ka jaap kar rahe hain तो हमें सिखाया गया कि हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने से पहले एक पंच तत्व का मंत्र हम लोग जपते हैं उनको बोला जाता है क्योंकि जप में होने वाले जितने भी अपराध हैं वो उनको बैलेंस कर देता है या उनसे होने नहीं देता है या उसका जो भी हमें पाप है उसका कम हो जाता है नाम जप के दौरान देखिए इतनी सुंदर जो पर्सनैलिटी है श्रीवास पंडित जी ठीक है जो पंच तत्व है उनको तत्व मतलब ट्रुथ सत्य सत्य से जानो चीजों को जैसे कि कैंटो वन के अंदर एक बहुत ही सुंदर वर्स है वदन्ति तत् तत्वविदं तत्वं यद् ज्ञानं अज्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्देते कि वहां पे जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है वो तीन लेवल पे तीन फीचर्स में उसको पहचाना जाता है ठीक है और यहाँ पे हमारी गौर लीला में जो ये एब्सोल्यूट ट्रुथ है वो पांच फीचर्स में पहचाना जा रहा है। पंच तत्वत्मकम कृष्णम भक्त रूपा स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्ति शक्तिकम। कि चैतन्य महाप्रभु जो कि हर चीजों के स्तोत्र हैं, उन्होंने अपने आप को पांच चीजों में विभाजित किया है इस दुनिया में आए बद्ध जीवों को अपनी दया देने के लिए, अपनी मर्सी देने के लिए, अपना कंपैशन देने के लिए। भक्त रूपा, खुद स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। भक्त स्वरूपा, श्री नित्यानंद प्रभु। भक्त अवतारा, श्री अद्वैत प्रभु। भक्त आख्यम, श्रीवास पंडित दे। एंड नमामि भक्ति शक्तिकम, भक्ति शक्ति कौन? श्री गदाधर जी। ठीक है, तीन इसमें जो पर्सनालिटीज हैं, नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु, अद्वैत प्रभु, वो विष्णु तत्व हैं। और शक्ति तत्व जो उनकी लादनी शक्ति है, जो श्रीमती राधा रानी है, वो गदाधर के रूप में आई है। उनको उनको शक्ति तत्व बोलते हैं। अब रही बात पंडित जी की, हमारे श्रीवास पंडित जी, वो आते हैं जीवा तत्व के अंदर, मतलब तटाष्ट शक्ति, मार्जिनल शक्ति। ये आज कहा जाता है कि जैसे ही भौतिक संसार में देखें, जब कोई कोई जीवा आती है, जन्म लेती है, तो उसका जन्मदिन काफी उत्साह से मनाया जाता है, है? मगर जाने के बाद उनका उत्साह से नहीं मनाते हैं, रोते हैं उनके पीछे। मगर हमारे गौड़े वैष्णव में ऐसा नहीं है, आने पे भी उतना ही उत्साह होता है और जाने पे दो गुना, तीन गुना, दस गुना ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जो जीवा है, जो भगवान से संबंधित है और इतनी पावरफुल शक्ति के साथ उतरी है इस धरा पे, जिस मिशन के लिए, जिस पर्पस के लिए, जिस कार्य के लिए उनको भेजा गया था, वो कार्य उन्होंने बखूबी निभाते हुए इस धरा पे अपना लीलाओं का समापन किया। तो ये बहुत भारी उदाहरण है हमारे लिए कि हमें अपना जीवन कैसे व्यापन करना है इन जीवाओं से। ठीक है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कि धर्म की संस्थापना करने के लिए मैं हर एक युगों में आता हूँ, या तो खुद आता हूँ या अपने शुद्ध भक्तों को भेजता हूँ धर्म की संस्थापना करने के लिए। तो यहाँ पे भी देखिए, चैतन्य महाप्रभु का एकमात्र उद्देश्य था कि लोगों को ये सिखाई जाए पर्सनल तरीके से कि भक्ति कैसे करी जाती है, क्योंकि भागवत गीता का उन्होंने इंस्ट्रक्शंस तो दे दिया, ठीक है, और वो उन्होंने 40-45 मिनट, 50 मिनट के अंदर अर्जुन को दे दिया, वो भी संस्कृत के अंदर। अर्जुन इतना महायोगी था, वो तुरंत समझ गया और अपनी ड्यूटी को उसने समझा। बातें हैं से अपने जीवन जाए, ये मात्र ठीक है। नमो मगर कुछ सेक्शन में उन बोला गया कि जितने उनमें से सबसे सबसे कृपा, ठीक है, वो महाप्रभु और उनके भक्तों का हुआ है। हम देखें गौरीलीला में कितनी अनेकों लीलाएं जिसमें जगाई मदाई और भी अनेक अनेक लोग हैं जिन्होंने महाप्रभु और उनके भक्तों के ऊपर अत्याचार किया, ठीक है, उन पर अपराध किया, मगर उसके बावजूद भी महाप्रभु ने उनको कृष्ण प्रेम प्रदान किया। यहाँ पर अब ये कहा जाता है कि ये जितने भी पंच तत्व हैं, ये स्टोर हाउस है लव ऑफ गॉड हेड का, मतलब एक एक। और ये भी कहा गया है कि चैतन्य चरितामृता में और चैतन्य भागवत में कि जितने भी महाप्रभु के पार्षद हुए हैं, वक्रेश्वर पंडित हैं, मुकुंड दत्त, वासुदेव दत्त, जितने भी है, सब में इतनी इतनी शक्ति है कि वो अनेकों अनेकों ब्रह्मांड वो तार सकते हैं अपनी अपनी प्रेजेंट से। तो उनमें से एक ऐसे ही भगवान के भक्त हैं श्रीवास पंडित जी। यहाँ पे देखिए, जो श्रीवास पंडित है, गौरा गणोदेश दीपिका के अंदर बताया गया है, वो भगवान नारद के अवतार है, ठीक है। अभी देखिए, जो नारद जी हैं, अगर हम श्रीमद् भागवतम उठाएंगे, वो तकरीबन हर कैंटो और नहीं तो मेजोरिटी हर चैप्टर के अंदर आ रहे हैं वो। अब देखिए कितने कितने पावरफुल पर्सनालिटी है। मान लीजिए ध्रुवा महाराज का प्रसंग स्टार्ट हुआ, प्रहलाद महाराज का स्टार्ट हुआ, कुंती देवी का हुआ, भीष्म देव का हुआ, अब कोई भी प्रसंग उठाइए वो दो तीन चार चैप्टरों के अंदर खत्म हो जाता है, उनके बाद में चर्चा भी नहीं होती है। ठीक है, कोई भी श्रीमद् भागवतम के पेजों में है, पन्नों में है, तो वो बहुत महान हस्ती है। ठीक है ना, मगर नारद मुनि जी एक ऐसे पर्सनैलिटी हैं, एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो तकरीबन तकरीबन हर कैंटो और हर दूसरे तीसरे चैप्टर में आ ही रहे हैं। ठीक है ना, मुझे अच्छी तरह याद है हमारे घर पे जो नारद मुनि बोला जाता था, जैसे हम लोग टीवी चैनल देखते थे, सीरियल्स देखते थे, श्री कृष्णा महाभारत रामायण ये सब देखते थे, तो वहां पे नारद मुनि को करैक्टर को बताया गया एक जोकर की तरह, मिमिक्री की तरह, ही कुछ जाके चुंगलियां करनी है, यहां से वहां इसकी बात उधर कर ली। तो हमारे वहां पे एक आंटी थी, माता जी थी, उनका उन्हीं की सहेलियों ने, वहीं स्ट्रीट की गलियों ने उनका नाम रखा था नारद मुनि, क्योंकि वो यहाँ की बात वहां करने में बहुत एक्सपर्ट थी। तो उनको बोलते थे ये नारद मुनि जी आ गए हैं, आप देखना ये पूरे स्ट्रीट का या पूरे शहर का जो वार्तालाप हुआ है ना, और कहाँ किसके घर में क्या चोरी, किसकी बेटी भाग गई, किसका बेटा भाग गया, वो सब बताएंगे। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जो टीवी चैनलों के माध्यम से हम जो शिक्षा प्रदान करते हैं ना, वो सरासर गलत ही है। अब पूरे भागवत में उठाया नारद मुनि कितने महान पर्सनैलिटी हैं, बहुत ही महान पर्सनैलिटी है। अनेक देखिए ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, मिर्गारी, अनेक अनेक भगवान के हर लीला के अंदर उनका आगमन अवश्य है ना। तो वैसे ही यहाँ पे जो श्रीवास पंडित जी हैं, जो नारद मुनि ही हैं, उसके रोल में आए हुए हैं। ठीक है, भगवान ने सबसे ज़्यादा जो पास टाइम है उनके घर में किया है और उन्हीं के साथ किया है। देखिए श्रीवास आंगन बोला जाता ना, आंगन, आंगन के अंदर महाप्रभु नाचते थे, एक साल तक हर रात पूरी नाचे, आठ आठ नौ नौ घंटा पूरा पूरा नाचे। ये महाप्रभु का प्रेम था श्रीवास पंडित के लिए। तो एक बार क्या हुआ यहाँ पे, आपके लिए मैं वो रेफरेंस पढ़ देता हूँ गौरा गणेश दीपिका से अंदर, कि 90 नंबर श्लोक है, श्रीवास पंडितो धीमन यह पूरा नारदो मुनि पर्वत आख्यो मुनि वरो या असि नारदा प्रियः श्री राम पंडित श्रीमान तट कनिष्ठ सहोदरा नमान अंबिका व्रजे धात्री स्तन्य धात्री स्थितापुरा सेव्या मालिनी नामनी श्रीवास गृहिणी माता। मतलब क्या है कि नारद मुनि कृष्ण लीला में नारद मुनि थे और गौर लीला में वो श्रीवास पंडित है, और वैसे ही उनके जो फ्रेंड थे, बहुत घनिष्ठ मित्र नारद मुनि के अपने टाइम के, वो थे पर्वत मुनि जी, और वो गौर लीला के अंदर वो भगवान के, ये श्रीवास पंडित के वो भाई बने हैं। ठीक है, उनका नाम है श्री राम पंडित, और श्रीवास जी की जो पंडित है, पंडित जी की जो वाइफ है, वो भगवान श्री कृष्ण के लीला में एक धात्री के रूप में थे, एक नर्स के रूप में थी, और वो यहाँ पे इनकी वाइफ के रूप में उतरी है, ये बताया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो चार ब्रदर हैं, श्रीवास पंडित, रमय पंडित, श्रीपति पंडित और श्रीनिधि प्रदीप, इसमें बताया गया है, क्योंकि जितने भी मैं रेफरेंसेस यहाँ दूंगा वो श्रीमद् चैतन्य चरितामृता और श्री चैतन्य भागवत से ही आपके पास आएंगे। वो तो बताया गया है वो टोटल चार भाई थे, और बताया गया है कि चैतन्य चरितामृता के 9वें या 10वें अध्याय के अंदर पूरे चैप्टर का नाम है कि चैतन्य महाप्रभु की ब्रांचेस, क्योंकि उनको एक ट्रंक, एक पेड़ की तरह बताया गया है, और उनसे जुड़े उनके जो शुद्ध भक्त हैं वो अलग अलग टहनियों की तरह हैं। ठीक है, और अलग अलग लीफ की तरह है यहाँ पर। तो उनमें से एक जो पावरफुल लीफ है वो श्रीवास पंडित है, और उनके जो भाई है रमा पंडित है, और जो उनके घर परिवार है उनसे आगे छोटी छोटी और टहनियाँ निकली हैं। मतलब ये सब के सब क्या है, एक बोनाफाइड संप्रदाय है, क्योंकि इनका एकमात्र उद्देश्य है जीवा को, जो बद्ध जीव हैं उनको अवसर प्रदान करे कि वो गौर लीला में जो भगवान ने जो जो टीचिंग्स, जो लेसन छोड़े हैं, जो शिक्षाएं छोड़ी हैं, उनको ग्रहण करते हुए फटाफट यहाँ से निकल जाएं यहाँ पे। अब देखिए हम अच्छे से जानते हैं कि जो श्रीवास पंडित हैं वो चैतन्य महाप्रभु से उम्र में बहुत बड़े थे। उनका जो जन्म था ना वो बांग्लादेश के सियालत में हुआ था। तो जब भी महाप्रभु आते हैं हम श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों में पढ़ते हैं कि जब कोई राजा आता है कहीं पे भी किसी भी एरिया में, तो वो अकेले नहीं आता है, उसका अंतराज, उसका घोड़े, उसकी बीवियाँ, उसके सोल्जर, सब कुछ इकट्ठे आते हैं। जब ये महाप्रभु को यहाँ पे आना हुआ तो उन्होंने अपने सभी भक्तों और देवी देवताओं को बोला, आप जाके अपना अपना रोल लेकर आप मेरे लिए स्टेज तैयार करो, मैं आऊँगा। तो जब श्रीवास पंडित को पता लगा महाप्रभु के आने का आगमन हो गया है, तो वो बांग्लादेश से आए, वहाँ से निकले सबके सब, पूरा घर परिवार, और आके वो नवद्वीप में आके रहने लगे। और नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु के जन्म से कई वर्षों तक उन्होंने श्री अद्वैता आचार्य जी का बहुत अच्छा संग किया, और उनके घर पे हर रोज सुबह शाम श्रीमद् भागवतम का प्रचन होता था। और इतने दक्ष थे श्री अद्वैता आचार्य जी कि वो अपने संग से जो भी उनके संग में आया वो सबको शुद्ध करते गए, और उनका संग करते करते श्रीवास जी श्रीवास पंडित बन गए। पंडित का मतलब क्या होता है यहाँ पर? पढ़ा लिखा आदमी जिनको शास्त्रों का ज्ञान है। तो उनके एक तरह से श्री अद्वैताचार्य जी ने वहाँ पर उनको एक गुरु का रोल दिया, मतलब उनके जीवन में प्ले किया उनको श्रीमद् भागवतम यहाँ पे सिखा के, ठीक है। तो उन दिनों जब वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ एज अ निमाई के रूप में, तो हम अच्छे से जानते हैं कि निमाई अपनी नटखट लीलाओं के लिए कितने फेमस हैं। तो उनको वो वेद शास्त्रों के खुद ही क्या है, रचयिता है। वेदा सर्वे अहम एव वेद्यो वेद वेदांत कृत वेदावित एव चाहम। तो यहाँ पे महाप्रभु को क्या था, वहाँ पे जितने भी स्कॉलरली, क्योंकि जो पूरा का पूरा बंगाल है एक टाइम पे वो जाना जाता था स्कॉलरली पीपल के नाम पे, वहाँ पे वेद शास्त्रों के पंडित महारथी हर कोई वहाँ पे जन्म लेता था, और सबके सब अपने शास्त्रों में परिपक्व थे अपनी अपनी फील्ड के अंदर। तो महाप्रभु वहाँ पे छोटे थे, वो हर किसी को बुला बुला के उनको टक्कर देते थे शास्त्रों की, और टक्कर ऐसी देते थे कि उनसे क्वेश्चन पूछते थे और वो क्वेश्चन का जवाब देते थे, और महाप्रभु उनके उस जवाब को काट देते थे और फिर अपना जवाब स्थापित करते थे, और बाद में जो उन्होंने पहले वाला दिया था जवाब उसको सही कर देते थे और अपना काट देते थे, फिर अपना काट देते तो उनका सही कर देते, ऐसे ऐसे बहुत चलता था, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे। तो हर कोई डरता था कि यार ये 5-6 साल का जो है ना लड़का, हमारी दुकान जो चल रही है ना घरों में बंद हो जाएगी, क्योंकि सबके सामने हमारी बेइज्जती होगी, हमें क्वेश्चन पूछेगा हम आंसर नहीं दे पाएंगे, तो भैया हमारे पास कोई पढ़ने के लिए आएगा नहीं। तो ऐसे ऐसे देखते देखते वो वहाँ से दूर दूर लेके भाग जाते थे, मगर महाप्रभु इतने चालाक थे वो भाग भाग के पकड़ते थे उनको कि इसका जवाब दो, आप तो अपने आप को टीचर बोलते हो, मुझे इसका जवाब दो, मुझे इसका जवाब दो। तो जब वो देखते थे कि ये छोटा सा बच्चा इतना दक्ष है शास्त्रों के अंदर, तो वो मन ही मन में सोचते थे कि काश काश ये निमाई वैष्णव बन जाए तो हम वैष्णवों का मान सम्मान ऊंचा हो जाएगा, क्योंकि ये मायावादी जो ब्रह्मवादी हैं सबको ये काटता जाएगा और वैष्णव सिद्धांत करेगा। तो ऐसे ही एक बार क्या हुआ, वो सड़क पर जा रहे थे, उनकी मुलाकात हुई श्रीवास पंडित जी थे, मगर महाप्रभु देखो वो वेदों के रचयिता हैं, मगर वो वैष्णव और ब्राह्मणों का भी बहुत आदर सम्मान करते थे। जब भी उन्होंने श्रीवास पंडित को देखा रास्ते में, उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, तो श्रीवास पंडित ने भी उनको ब्लेसिंग दी। उनकी क्या ब्लेसिंग दी उनको, कि आपका जो भक्ति है, आपका जो डिवोशन है भगवान श्री कृष्ण के प्रति जागृत रहे, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, ये आशीर्वाद दिया। और महाप्रभु जो भगवान खुद ही हैं, ठीक है, अब उस भगवान को क्या आशीर्वाद दोगे, मगर फिर भी इस धरा पे उतर के उन्होंने जो उदाहरण प्रस्तुत किया, वो क्या प्रस्तुत किया, उन्होंने बोला कि ओ श्रीवास पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे आशीर्वाद दिया भगवान श्री कृष्ण का भक्त बनने का, देखना एक दिन मैं जरूर भक्त बन जाऊंगा आपकी इच्छा से और आपके आशीर्वाद से। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि महाप्रभु यहाँ पे सिखा रहे हैं कि जो भक्ति बिना भक्त के, आशीर्वाद के, बिना मर्सी के बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो सकती। आप कितना भी ट्राई करके देखो भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने का, उनकी शिक्षाओं को प्राप्त करने का, आप तनिक भी सफल नहीं होंगे। देखिए सड़कों पे आप लोग कितना सारा बुक्स बेचते हैं ना उतर उतर के, जर्नल जो एक कॉमन आंसर है ना हमको सबसे सुनने को मिलता है, अरे यार ये तो हम अच्छे से जानते हैं, हमारे पास तो 36 भागवत गीता है, अरे हम सब श्लोका जानते हैं, आइए हमारे पास, हम आपको बैठ के समझाते हैं। तो ये ऐसे ऐसे उल्टा हम पे आते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण और भागवत गीता को जानता है उसका हृदय परिवर्तन बहुत तेजी से होता है, और उस हृदय परिवर्तन को चेंज करने के लिए आपको वैष्णव का आशीर्वाद यहाँ पे होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब देखिए उन्होंने क्या बोला, और साथ में जो कि निमाई पंडित को स्ट्राइक किया बहुत ज़्यादा, वो बोलते हैं कि पीपल स्टडी इन ऑर्डर टू बिकम डिवोटी ऑफ कृष्णा, वट इज द यूज ऑफ ऑल देयर स्टडीज इफ दे डोंट बिकम डिवोटी, डोंट वेस्ट योर टाइम, इमीजिएटली स्टार्ट वर्शिपिंग कृष्णा। तो श्रीवास पंडित ने एक इंस्ट्रक्शन और दिया, बोलते कि निमाई तेरा इस पढ़े लिखे होने का क्या फायदा, इतनी तू ज्ञान अर्जित कर रहा है, इतनी डिग्रियां ले रहा है, एम कॉम बी कॉम बी टेक पी एच डी इतनी सारी तुम ले रहे हो, पर उस डिग्री का क्या फायदा कि आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त ना बनो, वो डिग्रियां बेकार है। पढ़ने लिखने का मतलब है वैदिक शास्त्रों में भगवान के शरणागत होना, मगर आजकल की जो पढ़ाई है वो हमें दूर लेके जा रही है भगवान से। तो इसलिए उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे लाइन बोली थी कि ऐसे पढ़ाई का क्या फायदा है, पढ़ने का मतलब है भगवान श्री कृष्ण के यहाँ पे करीब जाना। तो ऐसे ही हुआ, धीरे धीरे करके समय बीता, जब उनके फादर साहब जगन्नाथ मिश्रा जी जब वहाँ से चले गए, उन्होंने अपना शरीर त्यागा, तो उनके श्राद्ध के लिए निमाई कहाँ पे गए, गया में, वहाँ पे उनकी भेंट हुई उनके गुरु महाराज श्री ईश्वरपुरी से। जब उनको वहाँ पे दीक्षा मिली, दीक्षा मिलने के बाद देखिए कि कैसे हृदय परिवर्तन हुआ। वो पहले कितने ज़्यादा हाइपर थे, कितने ज़्यादा नोटी थे, ठीक है, अपने ज्ञान का प्रखंड करते थे, लोगों को बुला बुला के देखो मैं कितना ज्ञानी पंडित हूँ कितना वो, मगर जैसे ही उनको उनके गुरु का आशीर्वाद मिला वो तुरंत एक तिनके के समान हम्बल हो गए, ठीक है। उनको हरे कृष्ण महामंत्र मिला, ठीक है, जपने के लिए। वो जब जपते जपते गया से अपने घर आ रहे थे नवदीप, उनके आंखों से अश्रु बह रहे थे, उनको यही नहीं पता लगता था कि दिन है रात है क्या नहीं है, खाना है कि नहीं खाना है, कपड़े पहने कि नहीं पहने हैं। लोग उनको समझते थे पागल है, इवन दो उनकी माँ भी समझती थी कि क्या हो गया मेरे बेटे को, यू नो, गया था पिताजी का श्राद्ध करने के लिए, पगला पगला बन के घूम रहा है, लोग भी इसको देख रहे हैं कि भैया इनकी हरकत तो बदली बदली लग रही है। तो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु सबको सुन रहे थे। तो जब इसके बारे में श्रीवास पंडित को पता लगा ना कि भैया भगवान निमाई के बारे में ऐसी वार्तालाप हो रही है, वो कह रहे चलो देखते हैं ये कौन सा पागलपन अपना शो कर रहे हैं अपने निमाई जी। जब देखा तो निमाई जी बोले, निमाई पंडित, कि श्रीवास जी सब लोग मुझे बोलते हैं मैं बदला बदला हूँ, पागलों जैसी मेरी हरकत है, आपका क्या विचार है, आपकी टीका क्या बोलती है, आपकी कॉमेंट्री क्या बोलती है। तो श्रीवास पंडित ने देखा उनको ध्यान से और बहुत बोले ये पागलपन बहुत अच्छा पागलपन है, भगवान करे ये पागलपन मुझे लग जाए, इस पागलपन के लिए तो योगी हैं जो भक्त लोग हैं जन्मों खरबों से वेट कर रहे हैं, इन मूर्खों को क्या पता पागलपन क्या है और भगवत प्रेम क्या है। तो जैसे ही महाप्रभु ने ये शब्द सुने, क्योंकि श्रीवास पंडित भगवान के शुद्ध भक्त हैं, क्योंकि वो इतने पढ़े लिखे विद्वान हैं, वो आराम से सिम्टम देख सकते थे कि ये मेटीरियल पागलपन है या स्पिरिचुअल पागलपन है। तो महाप्रभु ने तुरंत उनको उठ के जोर के झप्पी दी जादू की, गले लगाया बहुत जोर के उनको, बोले श्रीवास अगर आज तुमने भी मुझे कह दिया होता कि मैं पागल हूं ना, तो कसम से गंगा में कूद के मैं अपनी जान दे देता। कहते कि तुम ही हो एक ऐसे जो मुझे अच्छे से यहां पे जानते हो, ठीक है। और जब महाप्रभु ऐसे थोड़े थोड़े करके बड़े होने लगे, फिर उन्होंने एक दिन डिसाइड किया कि चलो अब संकीर्तन, अब अपना रियल एक्शन का टाइम आ गया, बहुत खेलना कूदना हुआ, नटखटपन हुआ, ठीक है, लोगों से छेड़छाड़ हुई सबसे, अब अपना रियल बिजनेस शुरू करते हैं जो कि कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र। तो उन्होंने बोला श्रीवास जी तैयारी कर लो, बेल्ट बुल्ट कस लो, हम आ रहे हैं रात को आपके यहाँ पर करने के लिए। और वो दिन निकला एकादशी का दिन, और एकादशी के दिन महाप्रभु ने संकीर्तन शुरू करा जोर शोर से। और बताते हैं इन एक साल के अंदर जो उन्होंने बहुत जोर शोर से संकीर्तन शुरू करा, तो तब उस समय नित्यानंद प्रभु भी आ गए थे भगवान का साथ देने के लिए, और या एक तरफ से बोलने की भगवान से दया प्राप्त करने के लिए, मर्सी प्राप्त करने के लिए। और कहा जाता है कि नित्यानंद प्रभु जी ने अपना घर चुना किसके घर में, श्रीवास पंडित जी के घर में। कि जितना देर तक श्रीनिवास पंडित के घर में चैतन्य महाप्रभु रहे उतना देर तक चैतन्य नित्यानंदा प्रभु भी रहे। तो ये जो फैमिली वाले लोग हैं, गृहस्थ लोग हैं, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है कि हम अपने घर को इस तरह से फैसिलिटेट करें ताकि गौर निताय खुद आके वहाँ पे रहना चाहें और संकीर्तन करना चाहें। एक दिन ऐसे ही बहुत जोरों शोरों से वहाँ पे संकीर्तन हो रहा था, ठीक है। तो जब वो संकीर्तन हो रहा था वहाँ पे बहुत जोरों शोरों से, तो आपको पता है कि हम लोग भी जब स्ट्रीट पे जाते हैं, निकलते हैं, तो जरूरी नहीं कि हमको हर कोई हमारा स्वागत ही करता है कि चलो भगवान का भक्त है। कुछ लोग हमको अंदर गालियाँ भी देते हैं, अंदर क्या बाहर भी देते हैं गालियाँ, आगे भीख मांगने, ये ना कुछ काम धंधा है नहीं है, ना नौकरी है ना छोकरी है, ये ना पैसे मांगते हैं बुके बेच बेच के। अब इनको ये पता ही नहीं है कि असल में ये जो ऑक्यूपेशन है ये कितना बड़ा ऑक्यूपेशन है और इसे कोई नहीं करता है, सिर्फ भगवान के भक्त करते हैं। ये ऑक्यूपेशन उनको नहीं पता है, ठीक है। उनको क्या लग रहा है कि जैसे बस स्टैंड पे जाइए ISBT में, खैर अब तो नहीं होता होगा, शायद होता भी होगा, पहले आता था कि 100 दिनों में अमीर बने, 50 दिनों में अमीर बने, बुक से होती थी ना, बेचते थे छोटी छोटी बुक से, यू नो चित्रकला, ये कला वो कला, अनेक अनेक बेचते थे मैगजीन्स। उनको ये लगा ये लोग भी वैसे ही हैं, आपका कुछ ना कुछ बेच रहे हैं, पर ये बहुत बड़ा परोपकारी कार्य है जो कि उनको बाद में पता लगेगा। क्योंकि जब तक किसी वैष्णव का दया नहीं होगा ना हमारे हृदय में, हमारा भक्ति स्टार्ट नहीं होगा। आप में से कितने सारे लोग और इस मूवमेंट में कितने सारे लोग हैं ना, उनका जो मेजोरिटी रेशियो है ना, वो भक्त कैसे बने उनसे पूछना, हर कोई ये बताएगा मुझे किसी ने बुक्स दिया था सड़कों पे, मुझे किसी ने बस स्टैंड पे बुक दिया था, मुझे किसी ने कॉलेज में दिया था, मुझे किसी ने घर में आके हमारे प्रोग्राम होता वहाँ पे दिया था। तो ऐसे ही एक दिन ऐसे हुआ तो वहाँ के आस पड़ास के लोग ना तंग आ गए थे कि यार रोज रात को ना इनके घर से शोर ही होता है, इन बेचारे के पास जॉब तो है नहीं, ये बेचारे खाली पेट रहते हैं, पूरी रात सो नहीं सकते हैं, इसी करके ये लोग शोर मचाते हैं और उसी शोर में ये हमको भी जीने नहीं देते हैं। तो उन्होंने अफवाह फैला दी कि काजी आ रहा है, राजा आ रहा है, अपनी बोट पे 50-55 लोगों को लेकर आ रहा है और ये जितने भी रात को हरे कृष्ण महामंत्र करते ना इनको उठा उठा के अपने जेल में बंद करेगा। और जब ये रूमर श्रीनिवास पंडित को पता, पता ये भक्त का हृदय तो वैसे ही सॉफ्ट से है, क्योंकि वो क्या करते हैं कि हर कोई जो बोलता है उसे बोलते हैं ये बंदा सच्ची बोले, क्योंकि वो खुद भी सच्ची बोलते हैं, उनको ये नहीं पता कि उनके साथ चालाकी हो रही है या फिर झूठ से फैलाया जा रहा रूमर। तो वो डर गए, तो अपने घर के अंदर बैठ के वो नरसिम्हा देव भगवान का, उनके पास शालिग्राम थे, उसकी पूजा करने लगे जोर जोर से, हरे कृष्ण महामंत्रा या जो भी है नरसिम्हा मंत्रा वो करने लगे जोर जोर के। अब महाप्रभु सबके हृदय में बैठे हैं, ठीक है, योगक क्षेम महा में हम, कि उनको पता लग जाता है कि भैया मेरे भक्त पे आपत्ति पड़ी है। वो आए जोर के, उन्होंने आए दिया उनके दरवाजे पे एक लात, जोर जोर के 3-4 लाते दी, क्योंकि अंदर से दरवाजा बंद था और वो भगवान को इंटेंशनली प्रे कर रहे थे कि इस चांद काजी की मुसीबत से बचाओ, क्योंकि वो काजी आएगा तो हमारी वजह से या मेरी वजह से वो बाकी जो बेकसूर वैष्णव भक्त लोग हैं ना उनको क्या करेगा, उनको प्रताड़ित करेगा, तो ये प्रताड़ना मैं देख नहीं सकता। तो महाप्रभु आए लात मारी, लात मारते कि बोले श्रीनिवास पंडित तू किसकी पूजा कर रहा है, तो जिसकी पूजा कर रहा है वो शख्स मैं ही हूँ। तो उनके ऑल्टर में जाके बैठ गए, तो उन्होंने अपना नरसिम्हा रूप वहाँ पे दिखाया और इतना भारी नरसिम्हा रूप दिखाया कि वहाँ से वो कांपने लगे सारे के सारे नरसिम्हा अपना श्रीनिवास पंडित जी, क्योंकि वो इतना भयानक रूप था भगवान का देख के निमाई पंडित का कि वो कांपने लगे। कहते तुम डर क्यों रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कहते काजी भी तब तक तुम्हें पनिश नहीं कर सकता जब तक मैं उसे परमिशन ना दूं। मतलब क्या मतलब है कि मैं तुम्हारे हृदय में तो हूं ही, सबके हृदय में बैठा, मैं उस काजी के हृदय में भी बैठा हूं। कहता जब तक मेरा परमिशन नहीं होएगा ना काजी तक तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, वो यहाँ पे आ ही नहीं सकता है कि जब तक मैं उसे अलाउ ना करूं यहां आने के लिए। अरे तुम फिक्र क्यों कर रहे हो, अगर काजी आएगा तो मैं उसे प्रीच कर दूंगा, मैं उसके घोड़ों को प्रीच कर दूंगा, उनके बीवी बच्चे को प्रीच कर दूंगा, सबको मैं भक्त बना दूंगा, उसे आने दो, पर तुम तनिक भी चिंता मत करो। तो फिर इस आवेश में आके भगवान बोले कि मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम एक काम करो, तुम एक एक करके अपने सब घर परिवार को आ लो, सबको बुला लो, भाई बहन बीवी सबको। तो सबको बुलाए महाप्रभु और बताते हैं बिना उनके पता लगते, श्री श्री राधा गोविंद की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। तो जैसे ही उनको वहाँ पे पता लगा कि वहाँ पे उनकी भतीजी आई हुई है, उनका नाम क्या था, श्रीमती नारायणी देवी, और वो मात्र केवल 4 साल की थी, मात्र केवल 4 साल की थी, ठीक है। महाप्रभु ने उसे स्पेशल बुलाया, उसके सर पे अपना पैर रखा और बाकी सबके भी हृदय में अपना पैर रखा, उनके सर पे अपना पैर रखा, उनको ब्लेसिंग्स देने के लिए पूरा। फिर उन्होंने अपना उच्चिष्ट दिया नारायणी देवी को, और नारायणी देवी वो खाली मात्र 4 साल की थी। उन्होंने जैसे महाप्रभु का उच्चिष्ट खाया और आदेश हुआ कि हरे कृष्णा बोलो जोर जोर के, उनकी आंखों से अश्रु गिरने लगे, वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, जमीन पे लेट के रोलने लगी। तो उनके घर वाले देखे श्रीवास, ये क्या हो गया हमारी छोटी सी बच्ची को, क्योंकि उनको पता था कि इनके गर्भ में जो भविष्य में जब इनकी शादी होगी, गर्भवती होगी, तो इनके गर्भ में एक बहुत ही महान भक्त आएगा, और वो भक्त कौन है, शिला वृंदावन दास ठाकुर, जो कि उन्होंने आते ही क्या लिखा, चैतन्य भागवत लिखा उन्होंने भगवान के बारे में, कहते यही आके मेरे बारे में, क्योंकि मैं उसी के द्वारा चैतन्य भागवत लिखाया जाऊंगा, मैं ही यहाँ पे परमिशन दूंगा यहाँ पे। तो देखिए ये श्रीवास पंडित की वहाँ पे ब्लेसिंग थी यहाँ पे। और ये भी बताया जाता है कि जो श्रीवास पंडित है उनका जो घर है जिसको बोला जाता है श्रीवास आंगन, अगर आप हमारा जो टेम्पल है TOVP, अगर आप वहाँ से बाहर निकलेंगे और राइट की तरफ चलेंगे योग पीठ की तरफ, वहाँ से 1 या 1.5 किलो के बीच में श्रीवास आंगन का घर आता है वहाँ पे। तो अगर आप लोगों में से वहाँ पे गए होंगे ना, तो आपको वहाँ पे ऑल्टर देखेंगे, 3 ऑल्टर, ठीक है, 3 ऑल्टर है। उनके बीच वाले ऑल्टर में चैतन्य महाप्रभु हैं, ठीक है, अपने पंच तत्वों के साथ। और जो सबसे राइट वाला ऑल्टर है वहाँ पे एक ऑल्टर पे रखा हुआ है टूटा हुआ मृदंग, से बोलता खोल दंग भंग मृदंग। मतलब क्या था कि एक बार जब काजी वहां से गुजर रहा था, उसने देखा कि यार ये इतना ज्यादा शोर कहाँ से होता, क्योंकि वो बिलोंग करता था मुसलमान बैकग्राउंड से, ठीक है। तो उस समय का वो राजा था उस राज्य का, ठीक है, उसको ये था कि सिर्फ इस्लामिक धर्म के सिवा जो कि बाकी सब धर्म है उनको पनपने नहीं देंगे, हम उनको अलाउ नहीं करेंगे कि वो अपना धर्म का प्रैक्टिस कर सके। मगर फिर भी उस टाइम पे लोग किया करते थे छुप छुप के। उन्होंने देखा ये शोर आ रहा है, उन्होंने अपने सैनिकों को बोला, सैनिकों जाओ देखो कौन इतना शोर मचा रहा है, और तुम्हें कोई भी दिखे वार्निंग दो, और नहीं माने तो उनके जितने भी इंस्ट्रूमेंट है वो सब तोड़ दो। तो जब सैनिक लोग अंदर आए, राजा भी अंदर आए, उन्होंने देखा, उन्होंने आते देखा कि भक्त लोग वहाँ पे भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, और कीर्तन को देखते सार ही उन्होंने मृदंग को देखा, और मृदंग को उन्होंने अपने लातों से अपने भालों से उसे तोड़ दिया। तो ये जो लीला वहाँ पे रची गई थी ये वहीं पे रची गई थी श्रीवास आंगन के अंदर। तो जब इस बात का पता, जब ये घटना घटी, इस बात का पता लगा किसको, चैतन्य महाप्रभु को, वो बहुत अपसेट हुए। उन्होंने बोलते क्या, वो कौन सा इंग्लिश में वर्ड है, सिविल राइट्स, क्या है, सिविल डिसओबीडियंट राइट्स, कुछ मूवमेंट है ना, तो उसी को वहां से शुरू हुआ था। उसने सबको बुलाया, सब लोग अपने अपने घर में मशाले लेकर आओ, ठीक है, टॉर्च लेकर आओ, लाइट लेकर आओ, जितने भी अधिक से अधिक हो सकते हैं, कि कल शाम को हम अटैक करेंगे काजी के घर और उससे पूछेंगे कि क्यों भाई, अगर आपका धर्म है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, हम आपको कुछ नहीं बोल रहे हैं, अगर हम कर रहे हैं तो आपको क्या दिक्कत है, कह रहे सबको लेकर चलो। तो महाप्रभु और बताते हैं चैतन्य भागवत में इतने सुंदर वर्णन है कि जब उनका खोल भंग वहां पे तोड़ा गया और चांद काजी ने ऑर्डर दिया कि आज से कोई भी कीर्तन नहीं करेगा, संकीर्तन नहीं करेगा, वहां पे कुछ नास्तिक लोग थे वो बहुत खुश होते थे, तालियां बजाते थे, हे अच्छा हुआ, राजा ने हमारी सुन ली, राजा ने क्या, भगवान ने हमारी सुन ली है, इन लोगों को बंद करा दिया, कम से कम हम शांति से सो सकते हैं आराम से, बहुत खुश होते थे। जब अगले दिन देखा इतनी तादाद, और बताते हैं वहां पे कि एक उंगली भी रखने की जगह नहीं थी स्ट्रीट पे, कि इतने वैष्णव लोग, पता नहीं लग रहा था कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, बीवी बच्चे बूढ़े बड़े सब लोग मार्च लेके आ रहे हैं। और इसमें एक फनी स्टोरी बताई गई थी, जब ये लोग चल रहे थे ना काजी के महल की तरफ, तो बता रहे थे कि जो बाकी के जो एथिस लोग थे जो एक टाइम पे खुश हो रहे थे कि चलो अच्छा हुआ कि चांद काजी ने इनका मृदंग का तोड़ दिया, उनको हृदय में डर लगने लगा, कह रहा यार हम लोग तो हंसते थे इनके ऊपर कि भैया अभी इतने सारे लोग हैं, ये अगर इन्होंने हमें हंसते हुए देखा होगा ना ये हमें मारेंगे जरूर, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने चांद काजी को छोड़ के भक्तों के साथ जुड़ गए और बोले कि चांद काजी को पकड़ो, चांद काजी को मारो, मतलब उस भीड़ में जुड़ गए, पहले वो कहां वो भीड़ के अलग थे, उन्होंने बोला यार पकड़े गए ना तो भैया छित्र परेड बहुत होगी, तो बेटर है कि भीड़ के साथ ही हो लो। उन्होंने भी मशाले मशाले ली, चेंटिंग बैग लिया, गले में लटका लिया, किधर आ चांद काजी, बाहर निकल, तूने हमारा कीर्तन बंद कराया, बाहर निकल। मतलब इतने फनी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि जो भी दिख रहा सब सब डर गए कि यार किसने मुझे अगर पहचान लिया ना कि मैं वही बंदा था जिसने करी थी कंप्लेन तो मेरी पिटाई होगी, तो वो भी साथ में जुड़ गए। फिर आपको पता है कि जब वहां पे पहुंचे चांद काजी के पास तो वार्तालाप हुई, तो चांद काजी बोला निमाई बेटा मुझे भूल गए हो, मैं आपका मामा श्री हूँ। मैं आपका मामा श्री हूँ, मैं आपके नाना जी से आपकी मम्मी है, वो मेरी बहन लगती है। तो मतलब उधर ने अपना अब रिश्ता भी जोड़ लिया कि उनको पता है कि पिटाई होने वाली है। तो एनीवे फिर इसको सॉर्ट आउट हुआ। फिर महाप्रभु ने बोला कि बताओ आपका कुरान क्या बोलता है, ये क्या बोलता है, उन्होंने सब उसको बताया समझाया। फिर एंड में चांद काजी जी वहाँ में हमारे भक्त बन गए। फिर उन्होंने एक एक मुहर छोड़ी है, शायद पता लगा होगा आपको, पता नहीं मैंने यहाँ तो नहीं देखा है, मगर फॉरेन में ऐसे होता है, एक मुहर होती है हम लोग साथ में लेके चलते हैं ऐसे करके, खंडे टाइप की होती है ऐसे करके, जो वो मुहर है ना वो चांद काजी की मुहर है। वो मुहर का मतलब क्या है, कहते हैं कि महाप्रभु ये मुहर मैं आपको दे रहा हूँ, इसको अपने संकीर्तन के आगे आगे लेके चलना, क्योंकि जो भी कोई इस्लामिक बंदा इस मुहर को देखेगा वो समझ जाएगा कि संकीर्तन की परमिशन मैंने ही दी है, तो आपके संकीर्तन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो मुहर है वो चांद काजी की वहाँ से यहाँ पे दी गई है। अब देखिए वहाँ पे क्या होता है कि उस श्रीनिवास आंगन में अनेकों तरह की और भी लीलाएं हुई है। एक लीला हुई चैतन्य भागवत में बताया गया है 9वें अध्याय में, महाप्रकाश लीला, जो कि 21 घंटे तक महाप्रभु उनके श्रीनिवास के ऑल्टर में बैठे हुए थे और उन्होंने अलग अलग तरह के अलग अलग रूप दिखाए थे और सबको जो भी आता था सबको आशीर्वाद देते। मगर उनका एक स्ट्रिक्ट रूल ये था कि ये जो कीर्तन है महाप्रभु का जो रात को चलता है ये सिर्फ उनके भक्ति देख सकते हैं। इस कर के लिए वो क्या करते थे, सबको बुला के सबकी एंट्री पास होती थी, जैसे होता ना हमारे यहाँ पे थिएटरों में टिस्को में कि यहाँ पर डालते चुप करके कि एंट्री होगी, चुप करके एंट्री होगी, स्क्रीन पे सबकी एंट्री लगाई थी, सबको चेक करके बताया था। पर जो जो भगवान का भक्त था या बैरी था उसकी बिल्कुल भी वहाँ पे एंट्री नहीं होती थी। तो एक बार चुपके से श्रीनिवास पंडित की सासू माँ, अब सासू माँ वहाँ पे चुपके देख रही थी क्योंकि उन्होंने बहुत सुना था कि महाप्रभु रोते हैं रात को, करदन करते हैं, ऊपर ऊपर कूदते हैं, लोगों को आशीर्वाद देते हैं अपने चरणों का, मगर वो एक तरह से भक्त नहीं थी। तो उन्होंने बोला श्रीनिवास को, श्रीनिवास क्योंकि उनकी ड्यूटी थी ये चेक करने की कि मेक श्योर, क्योंकि वो उन्हीं का घर है, सिर्फ उनके भक्तों और उनके जो जो काफी करीबी पार्षद है ना उनके सिवा वहां पे कोई भी नहीं आना चाहिए। तो हुआ क्या वहां पर, जब उन्होंने देखा कि सासू माँ हो रही है वहां पर छुपी हुई है और बल्कि किसी को भी नहीं पता था, तो महाप्रभु ने सोचा कि श्रीनिवास आज मुझे आनंद नहीं आ रहा है कीर्तन के अंदर। कभी देखिए ना ऐसा होता ना, हम लोगों का भी होता कीर्तन तो कुछ जो भक्त लोग होते मूड में नहीं होते, आड़ा तेड़ा बजा रहे हैं, बम्पर मृदंगा बजा रहे हैं, कोई कैसे गा रहा है, आप कौन सी ट्यून गाते हैं वो अपने ही राग छेड़े बैठते हैं अलग से, तो सारा का सारा मूड खराब हो जाता है, मेडिटेशन खराब हो जाता है। उनको लगा कि क्या बात है आज मुझे आनंद क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको नहीं होना चाहिए, जाओ ढूंढ के लाओ। उन्होंने देखा मेरी सासू माँ खड़ी है। अब उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ, सासू माँ के बाल पकड़े, घसीड़ते हुए सासू माँ को लेकर आए महाप्रभु। महाप्रभु यही है वो दोषी जिसने आपके आपकी सेवा में आपके आनंद में विघ्न डाली, तो उसको वहां से बाहर निकाल दिया गया। एक दूसरा आया सेम ऐसे ही, एक था ब्रह्मचारी। अब ये ब्रह्मचारियों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें मैं भी इंक्लूडेड हूं, ठीक है ना। फालतू का ऑस्टेरिटी नहीं करने का, क्योंकि उससे भगवान तनिक भी प्रसन्न नहीं होंगे। क्योंकि क्या होता है, हम सब ऐसे कुछ लीलाएं सुनते हैं भगवान के पार्षदों की, रघुनाथ दास गोस्वामी की आधा गिलास दूध पीते थे, वो 22 घंटे नहीं सोते थे, अपने को लगता था ओवरनाइट तो मैं भी कुछ ना कुछ हो ही जाऊंगा, वो भी एकदम से खाना पीना सब छोड़ देते, सोना छोड़ देते थे, और हफ्ते बाद देख लो प्रभु जी पागल से घूम रहे हैं। प्रभु जी चैंटिंग शुरू हो गई है, अच्छा पता नहीं लगा, मतलब माइंड भी संतुलित नहीं है, सेहत भी संतुलित नहीं है, सिर्फ गोलियां खा खा के जी रहे हैं। फिर क्या कर रहे हैं, हम ऑस्टेरिटी कर रहे हैं। ऑस्टेरिटी के लिए वो चीज है ही नहीं जो उनको प्लीज करती है महाप्रभु को। तो उस ब्रह्मचारी को क्या था, उन्होंने थोड़ा सा कुछ बातचीत करी श्रीनिवास पंडित को, थोड़ा सा यू नो फटरिंग करी उनको कि आप ऐसे हो ऐसे हो, बोले मैं तो खाली पूरा जीवन 20 साल से मैंने दूध में जी रहा हूं, मैं पूरा दिन कुछ नहीं खाता हूँ। तो बोले यार तू तो बड़ा सात्विक ब्रह्मचारी है, तो कह रहे मुझे महाप्रभु का लीला देखना है। कहते नहीं यार उन्होंने मना किया है। कहते नहीं आप देखो ना, आप भी वही और मैं ब्रह्मचारी हूँ, आप तो फैमिली वाले हो, ब्रह्मचारी को करो ना अलाउ अंदर। तो उन्होंने कैसे ना कैसे ठीक है आपको मैं एक रूम में डालता हूँ, आप उसमें से झांक के देखना पर बाहर मत आना। तो उन्होंने किया, महाप्रभु ने डांस शुरू करा, उनको तुरंत पता लगा यार फिर आनंद नहीं आ रहा। कह रहे कोई है क्या यहाँ पर? कहते नहीं नहीं महाप्रभु कोई नहीं है, आप कीजिए कीजिए कैरी ऑन अपना संकीर्तन कीजिए। थोड़ी देर फिर किया, कहते नहीं कुछ तो प्रॉब्लम है, कोई है यहाँ पे जिसे नहीं होना चाहिए, बताओ श्रीवास कौन है यहाँ पर। तो वो डर गए क्योंकि उनको पता था कि महाप्रभु अंतर्यामी, उनको पता है कि भैया यहाँ पे क्या झोलझाल किया मैंने। तो पकड़ लिया, कहते हैं कि महाप्रभु एक ना ब्रह्मचारी था, उसको मैं अंदर लेके आया हूँ, वो आपका देता है, मगर वो बहुत अच्छा ब्रह्मचारी है, वो ना 20 साल से खाली दूध ही पी रहा है। महाप्रभु कहते फिट है मुँह तेरे, कहते बुलाके ला उसको यहाँ पे। कहते इसको मैं इसको ठीक करता हूँ, कैसे कैसे दूध पीता है और कैसे मेरा आशीर्वाद लेता है। तो महाप्रभु ने बोला कि बेटा दूध पीने से मैं प्राप्त नहीं होता हूँ, एक शुद्ध भक्ति करने से मैं प्राप्त होता हूँ। ये ऑस्टेरिटी तो देखो, इतने सारे गरीब लोग हैं ना जो बेचारे दो दो तीन दिन दिन खाने के बगैर चले जाते हैं। अगर आप एक दूध पी रहे हो वो तो बेचारे कुछ भी नहीं पी रहे हैं, तो मेरा दया तो उनके पास जाएगा पहले। तो समहा उधर माइंड फिक्स हुआ, उन्होंने कहा ठीक है महाराज मैं जाता हूँ यहाँ पे। मगर उनका हृदय बहुत दुखी था क्योंकि उनका कहीं ना कहीं एक जेन्युइन इच्छा था महाप्रभु का आशीर्वाद लेने का। तो उन्होंने परमिशन लिया, जाने लगे तो फिर बोले देखने दे यार मुझे, देखने दो मुझे, देखने दो। तो महाप्रभु बोले आजा 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 आजा, फिर उनको बुलाया और अपने चरण स्पर्श उनके सर पे करे। तो उनको वहाँ पे ये जबरदस्त यहाँ पे उन्होंने आशीर्वाद दिया कि देखो श्रीवास ये कभी भी ऐसा नहीं होता है, क्योंकि भागवत गीता में मैंने खुद ही बोला है ना, ज़्यादा सोना है ना कम सोना है, ना ज़्यादा खाना है ना कम खाना है। तो अपने शरीर के हिसाब से, अपनी सेहत के हिसाब से मेन फोकस क्या है? भगवान का सेवा होना चाहिए। भगवान का सेवा किसी भी एंगल से रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो ऑस्टेरिटी है वो आपके इंद्रियों के लिए है। आप उसमें प्राउड हो जाते हो कि भैया आज एकादशी थी, निर्जला था, मैंने ये नहीं पिया वो नहीं पिया, उसके बाद क्या किया 8 घंटा सो गए, फिर देखा यार 8 घंटा पास हो गया सोते सोते, मेरा निर्जला तो अच्छे से जा रहा है, यू नो थोड़ा सा और सो लेता हूँ पूरा हो जाएगा 24 आवर, नेक्स्ट मॉर्निंग में मेरे को शक्तियाँ प्राप्त हो जाएंगी। कभी ऐसा नहीं होता। चाहे आप खा के भगवान का सेवा कर सकते हो तो सबसे उत्तीर्ण है, क्योंकि भगवान का सेवा क्या है? वो भगवान की प्रसन्नता के लिए है। और इस टाइप का ऑस्टेरिटी जिसे फॉल्स बोलते हैं, फॉल्स की फॉल्स जितनी भी ऑस्टेरिटी है वो किसके लिए है? अपने खुद के इंद्रियों के लिए है यहाँ पर। अब देखिए, अब इसमें जब उनको ये पता लगा महाप्रभु को, सॉरी श्रीवास पंडित को, कि महाप्रभु बहुत शीघ्र ही संन्यास लेने वाले हैं, तो उनको बहुत दुख हुआ। उन्होंने बोला जब मेरा लाइफ एंड सोल जब यहाँ पे नहीं रहेगा तो मैं यहाँ पे रह के क्या करूँगा। तो वो वहाँ से मूव होके एक कुमार हट करके एक जगह है बंगाल में, वहाँ पे चले गए अपने सब परिवार के साथ। और महाप्रभु चले गए कहाँ पे? पुरी पे। मगर उनको आदेश था अपने सभी गौड़िया भक्तों को, ठीक है आप सबको हर साल मुझे मिलने के लिए मेरे पास आना है, जो कि हम रथ यात्रा सब लोग इकट्ठे से करेंगे। तो सबके सब हर साल 3-4 महीने के लिए वहाँ पे जाया करते थे। तो ऐसे ही क्या हुआ है, एक सुंदर सा पास टाइम आता है। वो पास टाइम क्या है कि किंग प्रताप रुद्रा और उनके जो सर्वेंट थे वो महाप्रभु का रथ यात्रा में लीला देख रहे थे, कोई इनका डांस देख रहे थे उनका अद्भुत। तो उन्होंने क्या किया, प्रताप रुद्रा ने उनके अपने नौकर के कंधे पे हाथ रख के दूर से देख रहे थे, क्योंकि महाप्रभु सन्यासी हैं और जो किंग है उसको बताया जाता है वो एक भोगी थे, मतलब भोगी नहीं थे एक्चुअल में, भगवान के भक्त थे, मगर फिर भी समाज में एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने उनका एसोसिएशन अवॉइड किया कि मैं सन्यासी, वो गृहस्था, वो औरतों से घिरा रहता है, पैसे के बारे में बातें करता है, मेरा उससे क्या लेना देना। मगर वो भगवान के इतने भक्त कि दूर से उनको देखते थे, उनकी पूजा अर्चना अपनी आंखों से किया करते थे। अब वो देख ही रहे थे तो श्रीवास पंडित क्या हुआ, उनके सामने आ गए उनके नौकर के। अब ये राजा को दिक्कत हुई देखने में, तो राजा कभी ऐसे करे, क्योंकि देखो ना कीर्तन हो रहा होता है, जैसे इतनी सारी भीड़ होती है और भीड़ में लोग क्या करते कीर्तन में, ऐसे ऐसे नाच रहे होते हैं ना, ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं। अब जो बेचारा बैक साइड पे भगवान को देख रहा था वो भी ऐसे ऐसे कर रहा था, क्योंकि जो अगले वाला आदमी ऐसे ऐसे कर रहा है। अब श्रीनिवास पंडित भी ऐसे ऐसे कर रहे थे, नाच रहे थे। अब राजा को हुई दिक्कत, ठीक है अब राजा को हुई दिक्कत, नौकर वो उससे ज़्यादा चलाक, वो बोला मेरे मालिक के देखने में विघ्न डाल रहा है, ठीक है। उसने 3-4 धक्का, ए भाई साहब थोड़ा हटो ना, राजा है यार क्या बात कर रहे हो, राजा है इस राज्य का, उनको देखने का है। उन्होंने इग्नोर किया, क्योंकि वो पूरे पूरे प्रेम आनंद में थे भगवान को देखे श्रीवास पंडित। उन्होंने 3-4 बारी किया, फिर मुड़े दाड़ से कान के नीचे दिया, किसके? नौकर के। नौकर झल्ला गया कि भैया ये क्या हुआ, और उल्टा मारने लगा उनको, अटैक करने लगा। ठीक है, श्रीवास पंडित को महाराज प्राप्त हुए, देखा कि भैया ये तो भगवान के शुद्ध भक्त श्रीवास, कहते अहो भाग्य, कितने भाग्यशाली हो कि भगवान के शुद्ध भक्त का आपको एक कान के नीचे पड़ा। कह रहा काश मेरे को पड़ा होता, मेरा जीवन धन्य हो गया होता। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको आपके गुरु महाराज से या किसी सीनियर भक्त से अगर आपको डांट मिले, ऐसे थोड़ा बहुत मिले, वो प्रसाद है। उसको आपको नाराज नहीं होना है कि भैया गुरु महाराज को मैं इतने चेक देता हूँ, इतने ड्रेसेस देता हूँ, इतनी गाड़ियाँ देता हूँ, उनके टेम्पल के लिए स्पॉन्सर करता हूँ, इतनी सेवा करता हूँ, ठीक है मुझे टाइम नहीं दे रहे, सबके सामने मुझे डांट देते, ईगो सी आ जाती है कि मेरा मेरे गुरु के साथ है ना, अभी टाइमिंग नहीं बैठता है, मैं इसको छोड़ नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने क्या बोला, एक शुद्ध भक्त ने आपको यहाँ पे छुआ है, आपको एक शुद्ध भक्त ने छुआ है, आपका कल्याण हुआ है। तो वो वहाँ पे मामला सॉर्ट आउट हुआ। और एक ऑफेंस हुआ यहाँ पे, एक ही श्रीवास आंगन के वहाँ पर जब वो कीर्तन करते थे कि देखा जाता है कि भक्तों में भी जब कोई भक्त काफ़ी अच्छे से प्रचार वगैरह करता है, यू नो काफ़ी अच्छे से अपनी भगवान को सेवा देता है, तो कहीं ना कहीं समाज के अंदर थोड़ा पॉपुलर हो जाता है, ठीक है ना। जो जो दूसरे भक्त होते हैं ना कहीं उनके हृदय में ईर्ष्या होती है, यार मुझसे 5 साल बाद में आया था, कहाँ टीवी चैनलों में आ गया है, सब देखो हर जगह बैठ के लेक्चर देता है, ये करता है, बात करता है, कहीं ना कहीं जलन आ जाती है। तो वहीं पे एक ब्राह्मण थे, मगर वो भक्त ब्राह्मण नहीं थे, ऐसे जाति ब्राह्मण, ऐसे नॉन भक्त ब्राह्मण थे। उनका नाम था गोपाल चपला और वो एक भट्टाचार्य ब्राह्मण कास्ट से थे। तो उन्होंने ना उनको डिसफेम करने के लिए, श्रीवास पंडित को डिसफेम करने के लिए उन्होंने प्लान बनाया। उन्होंने उनके वहाँ पे रात को ना, ठीक है, देवी की उपासना करने के लिए जो जो सामग्री चाहिए, मीट, दारू, लाल फूल, लाल चंदन, जो भी कुछ चाहिए वो उनके यहाँ पे रख दिया कि सवेरे आएंगे, ठीक है मैं सवेरे आके शोर मचाऊंगा कि देखो देखो श्रीवास पंडित कितना बड़ा पाखंडी है, कितना बड़ा ये है, ठीक है, तो इसकी इज्जत खराब हो जाएगी और मेरी इज्जत ऊपर चली जाएगी। श्रीवास पंडित ने सवेरे सवेरे खोला, कहना कहते हैं कि ओ माय गॉड, वो समझ गए कि भैया ये कोई तो है जो मेरा काम ऐसे करा। मगर उन्हें खुद बोला कि गांव वालों सभी इधर आओ, सभी सुनो मेरी बात, देखो मैं देवी का उपासक हूँ, तुम लोग मुझे ऐसे ही बोलते हो, मैं भगवान श्री कृष्ण का उपासक हूँ, नहीं देखो मैं हर रात को यहाँ पे मदिरा और माठ का सेवन करता हूँ, ठीक है ये सब सामग्री यहाँ पे देखो। और देखिए शुद्ध भक्त हैं, उनको चाहने वाले भी उनके भक्त होते हैं, तो आज पढ़ा कहते ओहो, कहते श्रीवास आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, कोई पागल होगा यहाँ पे रख गया है, ठीक है कोई बात नहीं हम साफ कर देते हैं। तो उन्होंने वहां पे साफ किया, गोबर का लेप किया, सब कुछ ऐसे करा, मगर अभी अपराध तो हो गया। उस गोपाल, ठीक है, चपल को क्या हुआ, 3 दिन के बाद उसको कोढ़ हो गया, उसके शरीर से कीड़े निकलने लगे, गल गया पूरा का पूरा शरीर। तो उसी समय निमाई वहां पर आए, वो जा रहे थे, कह रहे निमाई बेटा पहचाना मुझे, मैं तेरा मामा बेटा, बचा ले मुझे, देख मुझे कोढ़ हो गया है। बोले नहीं, तुमने मेरे एक शुद्ध भक्त के ऊपर अपराध किया है, उनका चरित्र खराब करने का प्रयास किया है, ये मैंने ही तुम्हें दिया है, अब ये जो कोड है तुम्हें मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम तक तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलेगी, तुम्हारा बिल्कुल भी कल्याण नहीं हो सकता है। मगर थोड़े समय के बाद जब महाप्रभु ने संन्यास लिया और वो जब बंगाल में आए, तो फिर दोबारा उनसे मुलाकात हुई, कह रहे कि मुझे माफ़ कर दो वो हरकत मैंने ही करी थी। कहते ठीक है, अब जाके श्रीवास पंडित के पास जाके आप उनसे माफ़ी मांगिए, ठीक है वो आपको माफ़ कर देते हैं, तो आपका ये कोड ठीक हो जाएगा। आई थिंक 9 बज गया, अभी कहने को तो बहुत कुछ है यहाँ पे, बट एज पर द इंस्ट्रक्शन हेयर कि 9 बजे तक यहाँ पे खोलना है। तो किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो प्लीज़ मुझसे पूछ सकता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो भगवान के जो भक्त हैं वो यहाँ पर आके हमें शिक्षाएं देते हैं, तो हमें उनका क्या करना है, अनुसरण करना है, उनका अनुकरण नहीं करना है कि वो कैसे कैसे सोते थे, कैसे कैसे क्या करते थे, ठीक है। वो जो हमारे लिए शिक्षा छोड़ के गए हैं ना, खासकर क्योंकि महाप्रभु के जितने भी नॉर्मल जो भक्त हुए हैं गौरलीला में, वो सबके सब फैमिली वाले थे। अब ये फैमिली वालों के लिए बहुत बड़ा होप है कि कैसे इस भौतिक जगत से निकला जाए यहाँ पर। तो एक पास टाइम के अंदर जब उनके कीर्तन हो रहा था महाप्रभु का, तो श्रीवास पंडित के बेटे थे, उन्होंने अपना देह त्याग दिया। अब देखिए कितना जबरदस्त शिक्षा है हम सबके लिए, चाहे वो ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है या कोई भी है, कि जब उनके पुत्र ने छोड़ा तो उन्होंने देखा कि अंदर से औरतों की शोर की क्यों हमारी आवाज़, वो जाके देखा कि क्यों क्यों मचा रहे तुम श्लोक शोर, तुम्हें पता नहीं है कि महाप्रभु अपनी आनंद लीला के अंदर बैठे हुए हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने देखा कि मेरा कि बोले कि श्रीवास जी आपका पुत्र का पुत्र ने देह त्याग दिया। तो बोले फिर क्या हो गया, एक पुत्र गया, मैं भगवान के लिए हजारों पुत्र ऐसे निछावर कर दूंगा। कहते कि अभी चुप बैठो, हम बाद में देखेंगे, क्योंकि महाप्रभु अभी नित्य लीला कर रहे हैं, उनके सेवा में उनके आनंद में कोई भी विघ्न नहीं होना चाहिए। तो महाप्रभु ने किया, जब सुबह होने लगी तो उनको लगा कि श्रीवास कुछ तो हुआ है इस घर में, कुछ तो है जिसको मेरे को अजीब सा लग रहा, बताओ ना क्या हुआ है। तो वो बोले कि महाप्रभु कोई कुछ नहीं हुआ है, आप अपना कीर्तन जारी रखिए। तो मगर दूसरे भक्तों ने बताया कि महाप्रभु आप जब कीर्तन कर रहे थे आज से 4-5 घंटा पहला, श्रीवास पंडित उनके पुत्र ने देह त्याग दिया। कहते कि अच्छा ऐसे कैसे देह त्याग गया, मैंने तो बोला ही नहीं था कि देह त्यागने का। तो कह रहे कहाँ पर है, लेके चलो। तो बोले ओ श्रीवास तूने मुझे ऐसा क्यों नहीं बताया पहले, पोते मैं नहीं चाहता था कि आपके आनंद में विघ्न हो। कहते कोई बात नहीं चलो। जो गए उन्होंने हाथ लगाया, स्पर्श किया, वहां से वो आत्मा वापिस आई। तो भगवान को अब टीचिंग देनी थी, तो बोले कि बताओ तुम ये शरीर छोड़ के क्यों गए। कह रहे महाप्रभु ये आपकी इच्छा से जीव आता है, आपकी इच्छा से जाता है, मेरा तो कुछ भी नहीं। जितना टाइम आपने मुझे शरीर में दिया था मैंने उतना समय बताया, अब जो डेस्टिनेशन आपने मुझे अगले पंथ के लिए रखी है मैं वहां पे अब जा रहा हूँ। उसके जाने के बाद वो वहां से चले गए। और उसके बाद महाप्रभु ने ब्लेसिंग दिया कि श्रीवास आज से तुम्हारा एक पुत्र गया है, मैं और नित्यानंदा आपके दो दो पुत्र हैं, तो हमें आप अपना पुत्र ही समझिएगा। देखिए एक गया तो दो आ गए यहाँ पे। तो कहने का तात्पर्य क्या कि आपके जीवन में कुछ भी ऐसा विघ्न आए, चाहे ऐसा हो या कैसा हो, महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण का सेवा तनिक भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये सब मेटीरियल स्टेजेस हैं, ये अप डाउन होता रहता है। मगर भगवान का आनंद, भगवान का प्रचार और भगवान की सेवा किसी भी एंगल से रुकनी नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए अगर किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो मैं प्रयास करूंगा इसका जवाब देने। तर गए सब लोग, यहां तो लिखा है कि वी हम्बली बेग यू टू फिनिश द क्लास बाय 9 AM इंक्लूडिंग क्वेश्चन एंड कॉमेंट्स। तो मैं तो उसी को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा हूँ यहाँ पे। चलिए ठीक है, अगर किसी का प्रश्न नहीं है तो हम लोग इसको विराम देते हैं। तो प्लीज अगर हो सके तो आज जाके आप लोग चैतन्य चरितामृता और चैतन्य भागवत है इनका श्रवण जरूर करें, और श्रीवास पंडित जी से आशीर्वाद मांगिए, क्योंकि वो बहुत महान भक्त है, बहुत सारे भक्तों के स्पिरिचुअल मास्टर रहे हैं नारद मुनि के रूप में, ताकि आज के दिन हम भी उनकी तरह दृढ़ता से भक्ति कर सके और भगवान श्री गौरंगा महाप्रभु को प्रसन्न कर सके।
एक महाप्रभु ने जैसे उनको आशीर्वाद दिया था ना, आपको भी बुढ़ापा का एक्सपीरियंस नहीं होगा।
क्या क्या?
बुढ़ापा
बुढ़ापा नहीं आएगा। किसको
बुढ़ापा एक्सपीरियंस नहीं होगा? श्रीवास पंडित को।
पर वो ये मुझे नहीं पता, मगर उन्होंने महाप्रभु एक बार पूरी से जब वो हर साल आते थे अपनी माँ को देखने के लिए, मतलब जैसे भी, तो वो अद्वैताचार्य के घर पे भी ठहरते थे और श्रीवास ठाकुर के घर पे भी, सॉरी श्रीवास पंडित के घर पे भी ठहरते थे। तो जब उन्होंने देखा तो उन्होंने पंडित को आदेश दिया कि तुम गृहस्था हो, तुम्हें थोड़ा इनकम, थोड़ा धन, थोड़ी आय अर्न करने का मौका है, तुम उसे क्यों नहीं कर रहे हो। कह रहे महाप्रभु मुझे चिंता नहीं है, मुझे पता है आप बैठे हैं, योगक्षेम भाव में हूँ, मैं आपकी सेवा करूंगा, बदल मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने तो उनकी आंखों से अश्रु गिरे, कह रहे इतना प्रेम मिले रही है। तो उन्होंने ये आशीर्वाद दिया था कि लक्ष्मी जी ये दर दर जाके भीख मांग सकती है, मगर तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि सॉरी कि आपके घर में किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं होगी, वो सब चीज मैं तुम्हें प्रोवाइड करूंगा, तुम अंदर ही रहो, तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं। आई थिंक ये मुझे पता है, बुढ़ापा वाला शायद मुझे पता नहीं, किसी को पता है बुढ़ापा वाला? अगर आपको पता तो बता दीजिए फर्स्ट टाइम ये वाला।
नित्यानंद प्रभु में विश्वास जो है महाप्रभु जो बोल रहे हैं नित्यानंद
भागवत में, चैतन्य भागवत में,
चैतन्य भागवत, हाँ
अच्छा,
नित्यानंद प्रभु में अटूट विश्वास है, इसलिए मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ।
अच्छा
क्यों वो बोल रहे हैं कि ये उसका जात वगैरह पता नहीं।
अच्छा नहीं प्रभु, अभी अगर आप कह रहे हैं तो हो सकता है, मगर मैंने तो ये पास टाइम नहीं पढ़ा है, या हो सकता है
उसके घर में क्यों रखे
महाप्रभु है, वी कैन डू एनीथिंग। जब उन्होंने ये बोल दिया कि लक्ष्मी जी भीख मांग सकती है मगर आपको नहीं मांगनी पड़ेगी, तो ये भी हो सकता है कि बूढ़े आप नहीं होंगे।
उन्होंने ऐसे बोला कि बुढ़ापा का अनुभव नहीं होगा, ऐसे
बुढ़ापे का अनुभव नहीं होगा। आप देखिए ना, हमारे खाली उनको नहीं मिला है, जो जो भगवान के अनुयायी हैं, अभी देखिए शिला प्रभुपाद जी के जितने भी शिष्य हैं वो 70-80 में हैं, उनका उत्साह देखे मालूम पड़ता है कि इनको आ गया ओल्ड एज। अपना शीशा देख के पता लगता है कि हमें ही आ गया यार ओल्ड एज, मतलब 35-36-38 साल के हो गए, टूटे पड़े हैं। सेवा के लिए होता है तो वो थोड़ा किसी को बोल दो दूसरे को, पर ये देखो एग्जाम्पल के तौर पर इसी एरिए के गोपाल कृष्ण महाराज 82 हैं, 81 79 है, तो ऑलमोस्ट 80 हैं अगले साल। देखिए कहीं पे भी कितनी भी भारी सेवा, अगले दिन आपको वो ऑर्डर नहीं मिलेंगे कहीं ना कहीं पे, है इतना बिजी स्केड्यूल है। उसके बाद भी उनका उत्साह कितना जारी है, उत्साह से कीर्तन है, शरीर में इतनी प्रॉब्लम है, हार्ट का इशू है, यू नो दांत का इशू है, बॉडी का इशू है, सब झर गया है। अगर महाराज को देखो उनका स्किन कैसे झूल रहा है एक एक ओल्ड पर्सन के, मगर फिर भी उत्साह के तौर पर कैसे हैं। महाविष्णु महाराज जो कि यूके से हैं, एकॉर्डियन जो प्ले करते हैं हरि नाम में, देखिए पूछिए 8-8, 10-10 घंटा करते हैं उनका। उन्होंने मुझे एक बार बोला कि मेरे को बैग दे दे, बॉडी बॉडी मसाज उनका दिया ना, उनका पीछे का बैग पत्थर की तरह है, मतलब अकॉर्डिंग बजा बजा के ना एक्सरसाइज कर करके ऐसे बड़े बड़े डोले बड़े बड़े यू नो ये, क्योंकि भगवान की सेवा में और कंटिन्यूसली गाते हैं 8-8 घंटा। ऐसे नहीं कि प्रभु जी एक घंटा मैं गाऊंगा, एक घंटा आप गा लेना, थोड़ा गला पक गया है, कंटिन्यूसली। उनकी भी एज ऐसी 74-75 है, अभी भी देखो चल रहे हैं। सो ये आशीर्वाद सबको ही है। चलिए ठीक है, शीला प्रभुपाद की जय, श्रीवास पंडित की जय, श्री श्री राधा गोविंद की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय हो।
ग्रेस परम ब्रह्म प्रभु की जो, हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे श्रीवास पंडित के जो पास्ट टाइम है इतना सुंदर तरीके से और फ्लॉलेस एकदम उन्हें बताया, बहुत मधुर तरीके से बताया। प्रभु जी हम धन्यवाद करेंगे एक बार प्रभु जी के लिए, हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे।